ओम शांति। बाबा की मुरली से सभी बाबा के बच्चों का बहुत प्यार है। मुरली सुनने के बिना एक दिन भी नहीं रहते, क्योंकि हम सब ब्राह्मणों का जीवदान मुरली है। बाबा ने शुरू से, जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, आप सबने बाबा का इतिहास पढ़ा होगा। ब्रह्मा बाबा लौकिक जीवन में गीता का बहुत प्यार से अध्ययन करते थे, नित्य गीता पाठ करते थे, और सत्संग भी जब होता था तो गीता पढ़ के सुनाते थे। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा के सामने वो गीता होती थी, लेकिन वो गीता पढ़ने की बजाय बाबा के मुख से शिव बाबा के बोल महावाक के उच्चारण होने लगे। जिस गीता को पढ़ने से पहले कोई का भी जीवन नहीं बदला, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से महावाक के उच्चारण किए तो सबके जीवन में परिवर्तन आने लगा, और दिन प्रतिदिन कई बहुत सारे भाई बहनों का संगठन बढ़ता गया। बाबा के महावाक्य ऐसे निकलते थे बाबा के मुखारविंद से, उस समय उसको मुरली नाम नहीं दिया गया था, लेकिन गीता ही थी, जो सच्ची गीता जैसे शिव बाबा ब्रह्मा मुख से उच्चारण कर रहे हैं और सब सुनने वाले उसके रहस्यों को समझकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते जाते। बाबा ने कहा, काम क्रोध नरक के द्वार हैं, काम जीते जगत जीत, और जिन्होंने उस बात को सुना उनके अंदर वो बात गई और उन्होंने पवित्रता का व्रत ले लिया, उनका जीवन बदलने लगा। वो सत्य गीता का ज्ञान जो शिव बाबा ने डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से उच्चारण किया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही रहा कि सबके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। और जब परिवर्तन आया, लोगों ने नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करना शुरू किया, तो अनेक समस्याएं आई, अनेक विरोध हुए, कई बातें हुई, लेकिन बाबा ने जो ज्ञान दिया, अथॉरिटी रूप से दिया, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं किया। भले बाबा के लौकिक संबंधी, क्योंकि बाबा को तो लौकिक में समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था, लेकिन जब बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए और लोगों ने जीवन में धारण किए तो बाबा का बहुत विरोध होने लगा। तो सबने समझाने की कोशिश की बाबा को कि बाबा, आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, सत्संग बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो बातें आप कहते हो ये चेंज कर दो, इसके लिए तो कुछ भी संभव नहीं है कि ये संस्था में सब आएंगे आपके पास। तो बाबा ने कहा कि कोई आए या ना आए, ये तो भगवानुवाच्य है, परमात्म महावाक्य है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा बाबा को धीरे धीरे निश्चय होते गया कि ये बोल जो निकल रहे हैं ये मेरे नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस मुख के द्वारा कोई दूसरी शक्ति बोल रही है और उसके बोलने से लोगों में परिवर्तन आ रहा है। ब्रह्मा बाबा बहुत समीप थे शिव बाबा के, कहता है ना कि मेरे बाजू में अगर बैठा है शिव बाबा के, तो मेरे मुख से जो बोल निकलते हैं पहले तो मेरे कान सुनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में परिवर्तन आया, उनके परिवार जीवन में सबके अंदर परिवर्तन आया, और धीरे धीरे एक संस्था अपना रूप लेती गई। और आप सब ने सुना कि 14 साल तक बाबा ने इन माताओं बहनों को जो सुनाया सिखाया उसमें ज्ञान के बड़े गहरे रहस्य स्पष्ट किए, ज्ञान तो पहले भी था, शास्त्रों में भी था, गुरुओं के द्वारा भी मिलता था, लेकिन परमात्मा ने जब डायरेक्ट ज्ञान दिया तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। और जो अगम निगम के भेद हैं, कहते हैं एक बड़ा सुंदर गीत आता है, शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अब वो डमरू समझते हैं शिव बाबा ने शंकर को उसमें दिखाते हैं, शिव शंकर को मिलाने के कारण, कि शंकर ने जब डांस की तो डमरू हाथ में था। डमरू जो बजाते हैं शायद आप लोगों ने देखा हो, तो डमरू बजाते हुए सारे अगम निगम के भेद खोल दिए। अब स्थूल डमरू की तो उसमें बात नहीं है, उसमें अगम निगम आदि मध्य अंत उसका ज्ञान कैसे स्पष्ट किया होगा। लेकिन कहावत में आया है, कहने में आया कि शिव का डमरू जो था वो जब डमडम बोला, माना जब वो बजने लगा तो सारे भेद खुल गए, रहस्य खुल गए। तो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा मुख से ये डमरू बजाया ज्ञान का, तो सारे भेद खोल दिए, रहस्य खोल दिए। क्योंकि जो बातें हम सब सुनते थे उनका यथार्थ अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, न आत्मा का रूप ज्ञान स्पष्ट था, न परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट था, न घर का ज्ञान स्पष्ट था। शास्त्रों में था, कुछ बातें हैं, बाबा कई बार कहते हैं कि गीता में कुछ तो आटे में नमक जितना है, बहुत थोड़ा बचा है, लेकिन सत्य ज्ञान जो परमात्मा ने दिया, गीता के ज्ञानदाता ने दिया, वो ज्ञान प्रायः लोप हो गया। और जब फिर से ज्ञान देना शुरू किया, धीरे धीरे स्पष्ट किया कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है, परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। अभी दो दिन पहले आपने सुना होगा कि अगर इतना बड़ा शिवलिंग होता ज्योतिर्लिंगम के रूप में, तो शिव बाबा यहाँ कहाँ आकर के बैठता, कैसे प्रवेश करता। तो वो ज्योतिर्लिंगम इतना बड़ा रूप नहीं है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंगम माना चिन्ह है, ज्योति का प्रतीक है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो शिव बाबा ने भी इस ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को, अपने स्वयं के परिचय को, घर के ज्ञान को, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, इसका आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, फिर इसकी पुनरावृत्ति कैसे होती है, ये नाटक ड्रामा की रीति से प्ले होता है, ये बहुत सुंदर और बड़े विस्तार पूर्वक शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से सुनाया। और सुनाने के साथ साथ उस समय बाबा के सामने तो केवल थोड़ी सी बहनें थी, कुछ भाई थे, लेकिन कुछ बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे हमारी गुलजार दादी थी, उस समय 9 साल की थी, और 9 साल की दादी जबकि दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, माँ के साथ आई और इसी संस्था में, इसी जगह पर बोर्डिंग बाबा ने खुलवाया और बोर्डिंग में पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब दादी को ट्रांस का पार्ट मिला, वरदान मिला, तो बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते थे, दादी और कई दादियां ऐसी ही, एक नहीं थी, बहुत सी संदेशी बनी, और वो संदेशियां उस बात को ऊपर देख के आती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं, उसको स्पष्ट करने के लिए वो छोटी छोटी बच्चियां ऊपर देख करके फिर दादियों के पास बैठती थी, विशेष करके मम्मा दादी, ब्रजेंद्रा दादी, इनके साथ बैठती थी, और वो बातें जो बाबा ने सुनाई है मुरली के अंदर, वो छोटी छोटी बच्चियां ट्रांस के द्वारा ऊपर देख करके आके बताती थी, सतयुग का प्रारंभ कैसे होगा, वहाँ योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे, सतयुग की राजाई कैसे चलेगी, त्रेता की राजाई ट्रांसफर कैसे होगी, कितने जन्म होंगे, कैसे वहाँ पर सत्व प्रधान प्रकृति होगी, ये सारे रहस्य है जो हम सब आज अपने चित्रों के माध्यम से म्यूजियम में सबको समझाते हैं। ये पूरा ज्ञान बाबा ने उस समय ही संदेशी के माध्यम से भी और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था। इसलिए जो ज्ञान अभी हम सबके आगे बहुत स्पष्ट है, उस समय तो बच्चे थे और इनके पास कोई शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं था। बाबा तो पढ़ा था शास्त्र, ब्रह्मा बाबा, लेकिन बहनें तो छोटी छोटी थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। ब्रह्मा के अव्यक्त रूप को, सूक्ष्मतन लोक, सूक्ष्म लोक को भी बाबा ने इतना गहराई से स्पष्ट किया उस समय, जो आज तक भी कई बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उसके रहस्य क्या हैं, ब्रह्मापुरी क्या है, विष्णुपुरी क्या है, शंकरपुरी क्या है, सूक्ष्म लोक जिसको हम कहते हैं क्यों रचा गया, किस लिए बाबा ने रचा, ये सारे रहस्य उस समय खोले। एक बार जब पहले पहले गुलजार दादी ट्रांस में गई तो ब्रह्मा बाबा यहाँ साकार में जो रूप दिखाई देता था वो बहुत चमकीला रूप ऊपर देख के आई ब्रह्मा बाबा का, तो देख करके आई वो तो डर गई कि ये क्या है, कि यहाँ बाबा हमारा बैठा है पर ऊपर क्यों दिखाई देता है। फिर उसने बताया आकर के दादियों को, दादी ऐसे ऐसे हमने देखा ऊपर, तो दादियां फिर बाबा को बताती थी, बाबा फिर स्पष्ट करते थे कि जो सूक्ष्म लोक है जहाँ पर ये तीन पुरियां हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ये ब्रह्मा का ही संपूर्ण स्वरूप है। तो धीरे धीरे ज्ञान के रहस्य स्पष्ट हुए और वो ज्ञान स्पष्ट होते होते जब ट्रांसफर हुआ, आपको एक वंडरफुल बात शायद सुनी हो आपने, जब कराची से 1950 में पार्टीशन के बाद ये भारत हुआ और पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान से जब भारत आए तो जितना भी ज्ञान बाबा ने दिया था वो प्रिंटिंग में तो था नहीं, क्योंकि लिखने की और पढ़ने की कोई इतनी जरूरत नहीं थी, सेंटर्स ही नहीं थे, बाबा बोलता गया ओरली सबने सुना, लेकिन कोई कोई दादियों ने डायरी बनाई थी, लिख लिया था अपनी डायरियों में, जो नोट्स ले सके वो लिया, प्रिंटिंग नहीं हुई। और जब बाबा का सारी संस्था बाबा ने ट्रांसफर करने की के लिए कहा तो सारे सामान को ले आने की छुट्टी मिल गई, वहाँ की गवर्नमेंट ने, राजाओं ने, जो राजाई थी उस समय, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो खुदा प्रस्त हैं, आपको तो खुदा का पैगाम देते हैं, आप यहाँ भी देंगे तो अच्छा है और अगर जाना है भारत में तो भले जाएं और पूरा सामान लेकर के जाएं। तो पूरा सामान जो खाने पीने का था, 380 लोग थे, तो पूरा सामान कैसे लाएंगे, खाने का सामान, पहनने का, कपड़े लगते, बहुत होता है 350-400 का, और एक ही स्टीमर बुक किया तो जितना स्टीमर में लोड आ सकता था, तो सबसे ज्यादा जो लोड था, जो दादियों ने डायरियां लिखी थी, मोटी मोटी किताबें लिख के रखी थी, तो बाबा ने बड़ी युक्ति से, बड़ी विधि से उन डायरियों को सबकी इकट्ठी किया और इकट्ठी करके कहा कि बच्चियां ये ज्ञान जो है शास्त्रों में कब आए, कैसे निकलेगा, तो ऐसा करो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लोहे का टैंक बनाओ, लाओ और जमीन में खड्डा खोद करके इसको हम यहाँ ही दबा दें। तो जितनी डायरियां सबकी दादियों की लिखी हुई थी वो सब इकट्ठी की और उनको एक बहुत बड़े लोहे के टैंक में वहां ही मिट्टी के नीचे दबा दिया। और बाबा ने कहा कि जब द्वापर में भूकंप आएगा फिर से निकलेंगे और फिर इसके शास्त्र बनेंगे, तभी दादियों ने छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा। तो 14 साल तक की जो बातें थी वो प्रिंटिंग में नहीं आई, मुरलियां नहीं बनी उसकी, और वो जो था भी कोई कोई एक दो डायरी हमारे पास आई दादियों के द्वारा जो मिली, लेकिन वो भी भाषा समझ में नहीं आती, उनकी जो उस समय की लैंग्वेज थी वो बड़ी वंडरफुल, विचित्र थी, तो उसको प्रिंट नहीं किया गया, यहाँ पर भी उसको हमने रिवाइज नहीं किया। फिर यहाँ पर धीरे धीरे एक डेढ़ साल के बाद फिर बहनें जब सेवा पर निकली हैं 51-52 में, तो सेंटर्स खुलना शुरू हुए, तो पहले दादियां उनको बाबा के महावाक्य के नोट्स लिख करके भेज देती थी, तो उस समय भी प्रिंटिंग की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, पूरा ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट किया, एक साथ नहीं बता दिया कि आत्मा ज्योति बिंदु है, शिव बाबा का रूप ज्योति बिंदु है, उसको भी ज्योतिर्लिंगम के रूप में बाबा ने भी पहले बोला, लेकिन धीरे धीरे बताया कि लिंग का रूप माना चिन्ह होता है, वो चिन्ह है, वो ऐसा कोई बड़ा रूप नहीं है। तो जब पूरा ज्ञान स्पष्ट कर दिया और वो समय था 62-63, 8-10 साल के बाद फिर बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे ये जो आपने पढ़ा है अभी तक, उस ज्ञान को बच्चों का ज्ञान, छोटे बच्चों का ज्ञान है, एक दो क्लास वालों का ज्ञान है, और जब आप आगे बढ़ गए हो तो उसकी जरूरत नहीं है, उसको जला दो। तो 62 तक की मूल्यां जितनी थी सब बाबा ने खत्म करा दी। उसके बाद जो रिफाइंड ज्ञान हुआ, वो ज्ञान जिसमें आत्मा का ज्ञान स्पष्ट है, पुनर्जन्म का ज्ञान स्पष्ट है, घर का ज्ञान स्पष्ट है, जो आज हम सबके सामने चित्र बने हैं, म्यूजियम बने हैं, बहुत स्पष्ट बातें हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई भी उलझता नहीं होगा, मूझता नहीं होगा, सब बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। बाबा कहता है मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, आप बच्चे मेरे सुदर्शन चक्रधारी हो, मास्टर नॉलेजफुल हो। तो एक एक बच्चे को जो नॉलेजफुल बनाया है बाबा ने, मुझे तो बड़ा नशा रहता है, गर्व है कि मुझे दुनिया की नॉलेज तो है नहीं, बाबा की नॉलेज ही मैंने बचपन से पढ़ी है, मुरलियां ही पढ़ी है। और किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी टॉपिक आती है, भाषण करो, क्लास कराओ, बाबा ने सब बातें साइंस की भी बताई है, तो सतयुग त्रेता की भी बताई, इतिहास भी पढ़ाया है, भूगोल भी पढ़ाया है, गणित भी पढ़ाया है, सब कुछ बाबा ने हम सब बच्चों को पढ़ा दिया, नॉलेज फुल अपने समान बना दिया है। आप लोग स्पष्ट समझते हो ना कितना गहरा रहस्य हम सब समझ गए। सबसे बड़ी पहचान हमें मिली मैं कौन हूँ। लोगों के पास अगर आत्मा का ज्ञान था तो उन्होंने क्या कह दिया, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो। एक और कहते हैं आत्मा पाप आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा। एक तरफ आत्मा के साथ ये पाप और पुण्य जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं वो निर्लेप है। अब बाबा ने इतना स्पष्ट ज्ञान दिया कि आत्मा जो कुछ करेगी उसकी सजा, उसका हिसाब किताब, उसको ही चुकतू करना पड़ेगा। ये आत्मा का इतना अच्छा ज्ञान कि एक छोटी सी बिंदी के अंदर 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, और वो रिकॉर्ड समय अनुसार पुनरावृत्ति जब होती है तो हूबहू रिपीट होता है। ये ड्रामा का वंडरफुल ज्ञान कहीं पर भी नहीं है, जो दुनिया के अंदर किसी भी बात में किसी के पास नहीं। भले गीता में शब्द आते हैं कि जो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आई, जो कुछ बना है वही रिपीट हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से जो स्पष्ट ज्ञान अनेक रहस्यों से भरा हुआ है, अगर हम सब बाबा के बच्चे इसको यथार्थ रीति से समझ जाएं तो क्या होगी स्थिति, कभी भी डगमग नहीं होंगे। कुछ भी हो रहा हो, अचल, अडोल, एक रस, क्योंकि कई बार उन परिस्थितियों को, उन बातों को हम सबने पार किया है, विजयी बने हैं। और ड्रामा का जो क्रिएटर है, जो डायरेक्टर है, जो इसका प्रिंसिपल एक्टर है, वो कौन, स्वयं भगवान है। इसलिए जब उसने रचा है और उसकी रचना में कभी भी कोई डिफेक्ट नहीं हो सकती। भले आज हमें कोई दिखाई देता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत की अवज्ञा कर रहा है, लेकिन कुछ कारण है, कुछ ड्रामा की नूंद के प्रमाण पार्ट उसका चल रहा है, उसमें भी कई रहस्य समाये हुए हैं, उसमें भी कुछ कल्याण है। ये बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दे करके हम सब बच्चों को बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बना दिया, निश्चिंत बना दिया, बेगमपुर का बादशाह बना दिया। ब्रह्मा बाबा तो थे, प्रैक्टिकल उन्होंने करके दिखाया, उनकी जीवन कितनी बड़ी पेपर आए। ज्ञान के आधार से ब्रह्मा बाबा ने अपनी प्रैक्टिकल जीवन बिल्कुल बेफिकर निश्चिंत बनाई। कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परीक्षाएं आई, लेकिन सदा एक रस, अचल, अडोल, स्थिर, ऐसी स्थिति सत्य ज्ञान का प्रमाण बन गई। तो ब्रह्मा बाबा ने अकेले अपनी जीवन नहीं बनाई, लेकिन अनेकानेक बच्चों की भी साथ साथ बना दी। बाबा ने केवल चार सब्जेक्ट पढ़ाई हैं, और इतनी सरल रीति से पढ़ाई, एक तरफ ज्ञान का सागर सब कुछ आकार मुरलियों में स्पष्ट किया है। कई लोग आजकल नए नए बच्चे आते हैं, कहते हैं अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, उसमें बड़ा आनंद है, एक टॉपिक पर है, साकार मुरलियां तो समझ में कम आती, कभी बाबा कुछ कहता है, कभी कुछ कह देता है, जंप जैसी लगती है। लेकिन अगर कोई ने सिर्फ साकार मुरलियों की अच्छी स्टडी की है तो मास्टर ज्ञान सागर बन जाएगा। सारा ज्ञान स्पष्ट किया बाबा ने। हाँ, उस समय हमारे पास कंप्यूटर युग नहीं था, शॉर्ट हैंड भी बहनों ने अपना बनाया हुआ था, टोटल मुरलियों की राइटिंग नहीं लिखी जा सकी जो बाबा बोलते थे। मैंने एक बार सोचा, जब मैंने टाइप सीखी, कि साकार बाबा की मुरली को मैं एक बार टाइप करूं शब्द बाई शब्द, तो पता कितनी मुरली बनी होगी। एक ही आधा घंटे की मुरली जो स्पीड थी बाबा की, वो कम से कम 12 पेज की बनी। अब हम 3 पेज में उस सारी 12 पेज की मुरली को कोई भी अगर शॉर्ट करेगा तो कितना करेगा। तो बहनों ने उसके नोट्स लिए, बाबा ने तो 1000 बार बोला होगा बच्चे बच्चे बच्चे, अब बोलचाल की भाषा, उसको लिखने वालों ने जो लिखा वो पॉइंट्स लिया, और पॉइंट्स लेने के कारण साकार मुरली में लगता है कि अभी बाबा ये कह रहे थे, अभी एकदम चेंज हो गया, बदल गया। लेकिन बाबा ने सब टॉपिक्स स्पष्ट की हैं, पूरा ज्ञान स्पष्ट किया है। ज्ञान को बाबा अव्यक्त होने के बाद उसको टच नहीं किया, जो समझा दिया था साकार में 33 वर्षों तक जो मुरलियां चली, उसमें बाबा ने पूरा ज्ञान, ज्ञान सागर ने स्पष्ट कर दिया, और कहा जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा बन जाएंगे वो मुझे प्रिय हैं। ज्ञानी तू आत्मा माना सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने वाले नहीं, लेकिन जिनके जीवन में वो ज्ञान स्वरूप में आ जाएगा वो ज्ञानी तू आत्मा है। तो जो ज्ञान दिया, जैसे आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान लाइट है, ज्ञान रोशनी है, लेकिन अगर ये आत्मा का ज्ञान मुझे मिला है तो देह की कर्मेंद्रियां जितनी आकर्षित करती हैं, जो चंचलता करती हैं, वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा मालिक है, स्वराज्य अधिकारी है, वो कर्मेंद्रिय जीत स्वतः बन जाएगी। तो अगर सत्य ज्ञान हमारे जीवन में आया है, स्वरूप हम बने हैं, तो उसके कुछ लक्षण प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देने चाहिए। ज्ञान आत्मा का है तो आत्मा मालिक बनकर के कर्मेंद्रियों से कर्म कराए। कभी नहीं कह सकता है, मैं चाहता नहीं था, मेरे मुख से निकल गया, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, मुझे आ गया, मैं बुरा सुनना नहीं चाहता था, इसने सुना दिया, मैं तनाव में आ गया, मुझे टेंशन हो गया। माना उसका अपने मन बुद्धि पर अपना शासन नहीं है, उसने ज्ञान का स्वरूप अपने जीवन को बनाया नहीं है। तो परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान दिया है, वो ज्ञान फिर प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए, तो जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए, अव्यक्त बन गए, तो किस पुरुषार्थ से बने वो बाबा ने अव्यक्त होने के बाद स्पष्ट किया, और केवल धारणाओं पर और सेवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणाएं दी। आज 50 साल हम सब ने अव्यक्त बाबा की पालना ली है। 2019 बाबा के अव्यक्त पार्ट की गोल्डन जुबली है, और इतनी 50 सालों में जो मुरलियां चली हैं, अगर इनकी स्टडी करो तो वंडरफुल बाबा का ज्ञान, एक एक रहस्य खोला है, गुणों को, धारणाओं को, शक्तियों को, विशेष हर गुण पर ध्यान खिंचवाया। आत्मा विशेष संपन्न और संपूर्ण कैसे बने, उसके लिए योग किस प्रकार से किया जाए। एक साल मैंने तपस्या वर्ष मनाया 2015 में, तो पूरे 12 मास के लिए योग की पॉइंट्स भेजी थी मधुबन से, और अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय अभ्यास की बातें लिखी गई थी, कैसे अभ्यास किया जाए योग का। तो बाबा ने अव्यक्त रूप से चारों सब्जेक्ट को, ज्ञान को टच नहीं किया, ज्ञान तो साकार बाबा ने सबको सुना दिया, लेकिन आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए धारणाओं पर विशेष अंडरलाइन कराई। इसलिए धारणाओं में एक टॉपिक लिया, पवित्रता के टॉपिक पर मुरली है, सरलता पर है, सहनशीलता पर है, कई गुणों पर है। तो कई लोगों को अव्यक्त मुरली सुन करके कहते बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती, लेकिन साकार मुरलियों में बाबा ने सब राज सब रहस्य बहुत स्पष्ट सुनाए हैं। केवल उसमें दो बातें हैं साकार बाबा की मुरली के अंदर, एक तो ब्रह्मा बाबा साथ साथ बीच बीच में अपने अनुभव सुना रहे हैं। अब उस बात को समझना कि ये बाबा ने बोला या शिव बाबा ने, साकार मुरलियों के अंदर आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो कि ये महावाक्य जो है डायरेक्ट शिव बाबा बोल सकता है और ये महावाक्य ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, दो आत्मा एक रथ से बोल रही है। अब जब अव्यक्त बाबा का पाठ शुरू हुआ तो गुलजार दादी तो ट्रांस में चली जाती, उस आत्मा का पाठ मर्ज हो जाता, लेकिन बाप दादा दोनों समान बन गए। इसलिए अव्यक्त मुरली के अंदर कोई ये नहीं कह सकता ये ब्रह्मा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। अव्यक्त महावाक्यों के अंदर दोनों का बहुत मेलजोल है, एक जैसी भाषा है, एक जैसी वाणी, उसमें ये नहीं बाबा सुना रहा है कि मैं ऐसा किया, हाँ कभी कभी सुनाता है ब्रह्मा ने ऐसा किया। तो ब्रह्मा बाबा के जीवनी पर शिव बाबा भी प्रकाश डाल सकता है। तो इसलिए अव्यक्त बाबा के महावाक्य जो है वो संपूर्णता के कारण ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण स्टेज में है, इसलिए अंतर दिखाई नहीं देता। साकार में साकार मूल्यों के अंदर थोड़ा सा पता चलता है, क्योंकि उस समय की प्रॉब्लम्स सृष्टि मंच की और हमारी सेवाओं का जो विस्तार हो रहा था उसमें बहुत सारे विघ्न बहुत सारी बातें आती थी, तो बाबा जैसी समाचार आते थे उसके आधार से मुरली चला देते थे। तो इसलिए साकार बाबा की मुरली के अंदर बहुत सारे राज हैं, ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल अनुभव हैं, और अव्यक्त बाबा ने जो 50 साल तक हम सबको पढ़ाया है उसमें विशेष करके संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी बाबा ने सब योग की गहराइयों पर स्पष्ट किया है। अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति किसको कहा जाता, बीज रूप की स्थिति किसको कहा जाता है, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्थिति से मनसा सेवा कैसे की जा सकती, बाबा ने सब विषयों को अव्यक्त रूप में स्पष्ट किया है। इसलिए मैं तो आप सबको एक शुभ राय देता हूं कि आप सब बाबा के बच्चे कम से कम ये जो 48 साल का महावाक्य बाबा के अव्यक्त महावाक्य प्रिंटिंग में है वो सब फुल स्टडी करो। एक एक मुरली की रोज स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि सचमुच ज्ञान सागर ने कितना विशाल रीति से हम सब की जीवन को श्रेष्ठ महान बनाने के लिए पढ़ाया है। चारों सब्जेक्ट का एसेंस बता देता हूं, क्योंकि अभी हमारी बहन जी कह रही थी हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, भले प्रश्न पूछें, लेकिन चारों सब्जेक्ट का एसेंस क्या है, ज्ञान योग धारणा और सेवा, चार सब्जेक्ट पढ़ाई हैं और चारों सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है, कोई लक्ष्य है तो उद्देश्य भी है। तो लक्ष्य और उद्देश्य मैं आपको बताता हूं। ज्ञान की जो सब्जेक्ट है वो हमें निर्बंधन बनाने के लिए है। जितना बाबा ने ज्ञान खोला है, चाहे आत्मा परमात्मा घर चक्र पुनर्जन्म जितना भी है, उसके बाद एसेंस आता है कि अब इस नाटक का अंतिम समय है, कलयुग का अंतिम समय है, इसलिए ज्ञानी तो आत्मा कोई भी नया हिसाब किताब क्रिएट नहीं करेगी। ज्ञान की सब्जेक्ट कहती है जो हिसाब किताब बने हुए हैं उनको ज्ञान योग से काट दो, आत्मा को स्वतंत्र बनाओ, फ्री हो जाओ और ऊपर उड़ के चलो। ये ज्ञान की सब्जेक्ट जितनी भी बातें आप पढ़ेंगे उसके पीछे ये ऑब्जेक्ट है। योग आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए है। जो हम योग कर रहे हैं वो आत्मा की जो मैल है, चढ़ा जो उसमें आ गया, गंदगी आई विकारों की विकर्मों की, उससे आत्मा स्वच्छ और सतो प्रधान बन जाए, जैसे ऊपर से सृष्टि मंच पर उतरी थी वैसी फिर से बन जाए। इसलिए योग की गहराई है और योग पर विशेष अटेंशन दिलाया जा रहा है। धारणाएं हमारी धर्म की स्थापना के लिए हैं, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग की जो स्थापना हो रही है, जब तक हमने संगम पर अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा नहीं की, तब तक हम देव पद के अंदर देवताई जीवन में इतने ऊंच पद को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए धारणाएं जो बताई जा रही हैं, वो हमारे सत्य धर्म की स्थापना के लिए हैं। और सेवा पर जो अंडरलाइन कराया गया है बाबा की मुरलियों में, वो सत्य राज्य की स्थापना के लिए हैं। कि जब राजधानी बन रही है तो हर प्रकार की प्रजा, हर प्रकार के वारिस, हर प्रकार के लोग चाहिए, और उसके लिए आप हम सबको सेवा के अंदर उतरना पड़ेगा। तो तन मन धन समय संकल्प श्वास जो कुछ है, उसे हम सबकी सेवा करते चलें, अपनी प्रजा बनाएं, सर्व आत्माओं को राजधानी में चलने का संदेश दें। तो ये चार सब्जेक्ट जो पढ़ाई हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा, उसका ये इसेंस है, सार है। और उसके लिए ही इतनी गहराई से बाबा ने इन बातों को मुरली के अंदर स्पष्ट किया है। बाकी कई शास्त्रों की बातें हैं, कई दूसरी बातें हैं, वो उस समय की प्रॉब्लम के अनुसार बाबा ने कही है। अभी बहन जी आए हैं, प्रश्न पूछेंगी।
भाई जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में मुरली के बारे में, मुरली में भरे हुए रहस्यों के बारे में आपने सुनाया। हमारे मन में सबको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मुरली जो है ये भगवान ने ही उच्चारण किया है, ये हम मानते हैं, ये निश्चय से ही हम सब यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी कई नए जो जिज्ञासु है उनके मन में प्रश्न आता है कि हम कैसे माने, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं सारी दुनिया में कि वहाँ पे भी जो महानुभाव लोग हैं वो भी, उनके भी उपदेश होते रहते हैं और यहाँ बाबा की भी हम मुरली सुनते हैं, तो क्या डिफरेंस है और हम कैसे माने कि ये भगवान ने ही उच्चारण किया है,
ये
ताकि हमारा निश्चय और बढ़े, इस क्लैरिटी के लिए हम पूछ रहे हैं।
इस बात को बताया पहले से ही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम सबके जीवन और विशेष करके शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बोला, वो सत्य ज्ञान होने के कारण पहले उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। पूरे जीवन में जो उनके अंदर लौकिकता थी, जो पारिवारिक पालना, पारिवारिक जीवन थी, जो धारणाएं होनी चाहिए, जब शिव बाबा प्रवेश हुए उसी दिन से उनका पूरा जीवन बदल गया। तो सत्य ज्ञान का पहला प्रमाण यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया, बाबा के जीवन में परिवर्तन पहले आया, और अथॉरिटी बन करके जो सत्य ज्ञान बाबा ने दिया है उसमें कोई भी प्रकार की उलझन नहीं दिखाई देगी, स्पष्टता है। और स्पष्टता के कारण हमें ये महसूस होता, आप निश्चय से कह सकते हो कि ये सत्य ज्ञान, गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा ही सत्य है, जो हम सबको सत्य बता करके हमारी जीवन बना रहा है। सुना तो पहले भी है, शास्त्रवादी भी कहते हैं, लेकिन कोई भी शास्त्रवादी आज ये चैलेंज से नहीं कहता कि आप घर गृहस्थ में रहो लेकिन पवित्र जीवन जियो, शादी करो लेकिन कभी भी काम विकार की आग न लगे। बाबा ने इतनी स्पष्टता से ज्ञान दिया और ज्ञान के साथ साथ सत्य ज्ञान होने के कारण शक्ति भी दी। तो ये सब जो जीवन बनाई परिवर्तन की, जो आज हम इतने निर्व्यसनी जीवन जी रहे हैं, इतने पवित्र और योगी बन करके रह रहे हैं, ये सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ है। और परमात्मा ने पढ़ाया है, इसलिए हम सब कह सकते हैं अथॉरिटी से कि हम कहीं भी किसी भी तरफ किसी भी ज्ञान को हम समझ करके बता सकते हैं, ये मनुष्य आत्माओं का ज्ञान है और ये स्वयं परमात्मा का ज्ञान है।
बहुत सुंदर, थैंक यू। बाबा मुरलियों में हमेशा कहते हैं कि मुरली में सर्व समस्याओं का समाधान है। जो भी हमारे मन में प्रॉब्लम्स है या उलझन है, कंफ्यूजन है, ये हम मुरली सुनने से समाधान मिलता है, ऐसे बड़े भी कहते हैं और कई लोगों का अनुभव भी है। लेकिन हम सबका प्रॉब्लम्स अलग अलग है, गांव वालों का अलग प्रॉब्लम है, शहर वालों का अलग प्रॉब्लम है, सब वैरायटी वैरायटी लोग हैं, तो उन सबके समस्याएं भी विभिन्न हैं, लेकिन इन सब विभिन्न समस्याओं का समाधान एक ही मुरली में कैसे मिलता है?
ऐसा है कि सब समस्याओं का कारण हमारी नेगेटिव विचारधाराएं हैं और बाबा की मुरली हमारे चिंतन को सकारात्मक बनाती है, पॉजिटिव बनाती है। इसलिए हर बच्चे को मुरली से अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिलता है। जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, सकारात्मक चिंतन मुरली के द्वारा मिलेगा, आपका चिंतन बदलेगा, आपकी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कोई एक एक को, भाई इसकी गांव वाले की ये प्रॉब्लम है, इस माता की ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे की ये प्रॉब्लम है, उसको देख करके मुरली नहीं चलाई है। लेकिन मुरली चलाते चलाते बाबा ने बच्चों को ऐसी सकारात्मक चिंतन की कला सिखा दी, अगर कोई भी व्यक्ति सकारात्मक सोचना सीख जाएगा, श्रेष्ठ चिंतन उसको आ जाएगा, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएंगी। और सचमुच उसी दिन की मुरली में जो मन में प्रश्न होते हैं, हजारों भाई बहनों के मेरे पास फोन आ जाते, आज मेरे प्रश्न का उत्तर आज की मुरली में मिल गया है। ये बाबा की जादूगरी है और मिलता है।
भाई जी, आपका कोई ऐसा अनुभव हम सुनना चाहते कि आप मुरली से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं?
ऐसा है कि
हम अपना पर्सनल अनुभव सुनना चाहते।
बाबा की मुरली हमेशा चमत्कार करती है। अगर सचमुच सुबह सुबह अच्छी तरह से कोई स्टडी कर ले, तो आने वाली दिन की हर परिस्थिति का ऐसे लगता है ये बाबा ने आज बताया, इसकी बात इसको हल की जा सकती है, टच होता है। लेकिन सबसे अच्छी प्रॉब्लम के हल करने की विधि है मन की शांति, एकाग्रता। मुरली सुनी, एकाग्रचित होकर के योग में बैठते हैं। हमारे आगे भी लौकिक की बहुत सारी बातें आई। मैं परिवार में इकलौता बेटा था और हमारे परिवार में हमारे जो पिताजी के बड़े भाई थे वो ज्ञान के बिल्कुल एंटी थे, थे कुमार ही, उनको बच्चे नहीं थे, तो मैं अकेला बेटा था, इसलिए वो मुझे बिल्कुल ही इस मार्ग में चलने के लिए रुकावट डाल रहे थे, विघ्न डालते थे। लेकिन जब बाबा की मुरलियां हमें मिली, पहले ज्ञान नहीं था मुरली के विषय में, लेकिन जब ये सुना और उसके द्वारा जो शक्ति मिली, उससे उस बात का कोई भी उन्होंने हमारे पेपर लिए, कभी भी मन के अंदर उलझन नहीं आई, कभी भी प्रश्न नहीं उठा कि कुछ हो न जाए। भले उन्होंने तंत्र किए, मंत्र किए, बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा के साथ के कारण और ये बाबा के महावाक्यों की शक्ति होने के कारण ऐसे सहज उत्तर मिल जाता था, बच्चे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। साकार में कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन जैसे बाबा की टचिंग आती थी और मुरली से उत्तर मिल जाता था और उसे पार हो गए, कुछ भी बात नहीं आई, ऐसे लगा बहुत सहज। कई बार कहते ना बाबा मक्खन से बाल निकल जाता, तो इतनी सरल रीति से हर परिस्थिति को हम पार किया है और कर सकते हैं। सभी आप सब करते हैं, अनुभवी होंगे मुरली से। और बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को टच करता है। हम बच्चे बाबा के हैं, हमने बाबा को अपनी जीवन समर्पित की है। अगर हमारे आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका जवाबदार बाबा है। इतना हमारा फेथ है कि बाबा उसकी रक्षा करेगा। और करता इसी तरह से है कि हम कहता, बच्चे अपनी बुद्धि को बहुत एकाग्रचित रखो, शांत रखो, मैं उसको टच करूंगा, वैसा कर लेना। इसलिए मनमत और परमत के प्रभाव से इसको जितना हम मुक्त रखेंगे, उतना बाबा की टचिंग आएगी, और टचिंग आएगी और हम कैच कर लेंगे तो हम परिस्थितियों को पार कर लेंगे।
थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, लेकिन हम महिमा तो ये भी करते हैं कि बाबा तो सर्वशक्तिमान है। अब बाबा पावरफुल या ड्रामा पावरफुल?
ऐसा है कि अगर बाबा इस बात को हमारे सामने रखे कि ड्रामा मेरे अनुसार चलता है, तो कई बच्चे लाइन में खड़े हो जाएंगे कि बाबा ये बात आई है, चेंज कर दो। इसलिए बाबा भी बड़े चतुराई से, युक्ति से कहता है कि बच्चे मैं भी तो बंधा हुआ हूँ, और सचमुच जो ड्रामा का क्रिएटर है वही अगर चेंज करेगा तो उसको कौन मानेगा, इसलिए वो चेंज करेगा भी नहीं। जो ड्रामा बनाया है उसमें बहुत कुछ रहस्य समाये हुए हैं, छिपे हुए हैं। हम लोगों को लगता है कि ये क्यों बना हमारे लिए, ऐसा क्यों हमारे आगे आ गया। ऊपर वाला जानता है कि इसमें इसका क्या रहस्य है, क्या इसमें कल्याण है। तो बाबा जानता है इसलिए चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर बच्चे लाइन में खड़े हो जाएं कि बाबा आप तो ड्रामा के मालिक हैं, आप मेरे आगे परिस्थिति आइए चेंज कर दो, तो कई बार इसमें भी बच्चों का नुकसान हो सकता है। इसलिए बाबा भी युक्ति से कहता, बच्चे मैं भी बंधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता।
क्या हम ऐसा भी माने कि जैसे प्रेसिडेंट है कि पूरे इंडिया में वही लॉ मेकर है, जो भी लॉ बनता है उस पर प्रेसिडेंट का ही सिग्नेचर लगता है, तो बाद में वो लॉ बनता है, वो लॉ मेकर है तो वो कभी लॉ ब्रेक नहीं कर सकता। तो क्या ऐसे परमात्मा,
अगर लॉ मेकर ब्रेक कर देगा तो फिर ब्रेकर हो जाएगा, मेकर कैसे रहेगा।
थैंक यू। साकार मुरलियों में बहुत बार रिपीटेशन होता रहता है कई चीजों का, इसके पीछे क्या राज है, क्यों बाबा रिपीट करते हैं इतने बार, जबकि हमें वो चीजें कई बार हम सुन चुके हैं, माना जान चुके हैं, तो फिर भी बाबा क्यों रिपीट करते हैं।
ऐसा है कि बाबा के सामने कई प्रकार के बच्चे आते गए, जो मुरलियां चली हैं। प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ कि बाबा के सामने अगर मान लो आज आप बैठे हैं और कल दूसरा ग्रुप आ गया, और बाबा को आत्मा का ज्ञान उसे पढ़ाना ही है पहला लेसन, तो बाबा ने वही ढंग से उसी मुरली को आत्मा के ज्ञान थोड़ा चेंज करके लेकिन आत्मा का ही ज्ञान दिया, क्योंकि नई सभा बैठी हुई है। तो इसलिए कुछ मुरलियां ऐसे लगती हैं जैसे ही हमने सुनी है फिर रिपीट हो रही हैं, लेकिन कुछ न कुछ नवीनता होती। और दूसरी एक बात ये है कि बाबा कहता है, बच्चे अच्छा मैंने कल सुनाई, परसों सुनाई, आपने सुनी, आपने अपने जीवन में धारण कर ली, धारण करो, पहले धारण तब तक नहीं होगी तब तक मैं सुनाता रहूंगा। तो जो बाबा सुना रहा है हम भावना भी सुनते हैं, कुछ नई बातें मिलती हैं, कुछ लगता है कि रिपीटेशन है, हमने सुनी है, हम जानते हैं, लेकिन जानते हैं प्रैक्टिकल जीवन में उतार नहीं पाया। तो कम से कम एक दिन ही उतारा तो दूसरे दिन उतार के तो देख लें। तो इसलिए अगर आपको लगता है ये बात रिपीट है, मुझे तो आज तक नहीं लगता है, मैंने तो कितनी बार टाइप की होगी, आप समझ सकते हो 40 साल से 42 साल से मैं कंटिन्यू मुरली डिपार्टमेंट को संभाला है, इसके बीच में कोई दूसरे मददगार नहीं मिले, 42 साल हो गए। 76 में मैंने शुरू किया, 2018 पूरा हो रहा है, 42 साल में मैंने कितनी बार, और अभी तो चलो कंप्यूटर आ गया, टाइप नहीं करता हूँ फिर भी उसको सेटिंग करता हूँ, वरदान स्लोगन प्रश्न उत्तर। पहले तो मैं स्टेंसिल जब काटता था तो एक दिन में 4 बार स्टेंसिल मुझे काटने पड़ते थे, 1200 1500 2000 मुरली छपती थी, और स्टेंसिल से 500-600 कापी अच्छी निकलती थी। तो कभी 3 बार कभी 4 बार मैं टाइप किया, फिर उसको पढ़ा, फिर उसमें करेक्शन किया, फिर करेक्शन करने के बाद फिर उससे क्वेश्चन आंसर निकाले, बहुत कुछ करना पड़ा, माना सुबह से शाम तक मेरा धंधा यही रहा। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आज की मुरली मैंने सुनी और पढ़ी नहीं तो मुझे लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया, क्योंकि उसी से उस दिन के लिए हमको खुराक मिल रही है, अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं, मन को अच्छा भोजन मिल रहा है, और हम कहें हमने तो सुन लिया, हमने तो 1000 बार टाइप कर लिया, क्या जरूरत है आज पढ़ने की। लेकिन जिस दिन बाबा कह रहा है, जिस दिन वो रिपीट हो रही, उस दिन के लिए हमारा होमवर्क है। इसलिए इसको कभी नहीं कहो ये रिपीटेशन है या हमने सुन ली है, उसको हम रोज की तरह से रोज नया भोजन। आज रोज भोजन करते हैं या नहीं करते, हम कहते हैं हम तो दाल चावल तो रोज खाते हैं, फिर क्यों खाते हो आप बार बार। शरीर को शक्ति देने के लिए भले कुछ वैरायटी चाहिए, मिल रहा है वैरायटी, अव्यक्त मुरली से मिलता है, वरदान से मिलता है, सार से मिलता है वैरायटी, लेकिन भोजन तो भोजन ही है, इसको हम ये नहीं कह सकते वो रिपीटेड है, वो शक्ति दे रहा है।
क्या हम ऐसे भी समझे कि कोई बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो बड़े हमें बार बार वही बातें बोलते रहते, तो हम ऐसा भी मानेंगे?
एक बात तो बड़ी इम्पोर्टेंट है,
एक
बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो पहले दिन पढ़ी है और लास्ट दिन तक वही चलेगी। वो कौन सी? जब तक हम देही अभिमानी नहीं बने, हैं देह में इसलिए अभिमान तो आता ना थोड़ा थोड़ा, आत्मा अभिमानी स्थिति हमारी बन जाए, इसलिए बाबा रोज मुरली में एक बार 10 बार कह देता अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये पाठ मैं समझता हूँ मैंने कितनी बार रिपीट किया होगा और अभी तक भी आत्मा समझ के नहीं चल पा रहे हैं। और जिस दिन हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे उसकी बहुत सारी निशानियां लक्षण दिखाई देने लगेंगे। मालिक है आत्मा, राजा है, कर्म इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होगा, मन को जहां चाहे वहां हम टिका सकेंगे, जितना समय चाहे वहां टिका सकेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है और वो स्थित प्रज्ञ एक ब्रह्मा बाबा ही बना, कर्मातीत बन गए इतनी जल्दी। हम सबको इसकी रेस करनी है। जितना समय आप एकांत में बैठते हो, समय मिलता है, योग अभ्यास करते हो, ऐसे नहीं मनन करते रहो, चिंतन करते रहो, इधर की बातें उधर सोचते रहो, मैं आत्मा इस भ्रकुटी में बैठी हुई हूँ, ये गुफा है मेरी, मैं एक लाइट हूँ, एक ज्योति हूँ, ये बिंदु इस शरीर से अलग हूँ, ये अभ्यास अगर हम सब पक्का कर लें, कर्म इंद्रिया जीत बन जाएंगे, मन और बुद्धि के राजा बन जाएंगे, आर्डर प्रमाण चलेगा, कभी भी कोई कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं होगा, आत्मा एकदम विक्रमाजीत बन जाएगी, पावन बन जाएगी। तो ये अभ्यास शुरू से अंत तक करना है और ये जब अंत कर पूरा हो जाएगा तो हम सब ये शरीर छोड़ के ऊपर चले जाएंगे।
थैंक यू भाई जी। आजकल मुरली तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, हमें मोबाइल में भी मिल जाती है, कंप्यूटर में भी और बाय पोस्ट भी, टीवी में भी आजकल मुरली हमें देखने को मिलता है, तो क्या सेंटर जाने की जरूरत है मुरली सुनने के लिए?
आप सब बाबा के बच्चे जानते हैं, जिस स्थान पर डायरेक्ट परमात्मा की लाइट आती, जो उनकी प्रेरणाओं से खुले हैं, जहाँ तपस्या चलती, जहाँ पवित्र और तपस्वी बहनें रहती, जो वातावरण एक चार्ज किया हुआ है। आप क्यों बार बार मधुबन भाग करके आते हैं? अभी तो बाबा नहीं आएगा, फिर भी आए हो, आप आए हो ना। इस वातावरण की जो शक्तियां हैं, जो परम धाम घर की शक्तियां हैं, जो सेंटर्स के वातावरण की शक्तियां हैं, वो आपको मोबाइल की शक्ति से नहीं मिल जाएंगी। भले सुन लो मुरली मोबाइल में, लेकिन पवित्र वातावरण, पवित्र बहनों का संग, अच्छा संगठन, अच्छा परिवार, एक दूसरे के वाइब्रेशन, इन सब से वो आत्माएं वंचित रह जाती हैं जो केवल अपने मोबाइल से या टीवी से सुनती हैं। अगर आपको सब कुछ प्राप्त करना है, शक्तिशाली बनना है, तो एक लक्ष्य रखो, एक बार बाबा के घर में जरूर जाना है, वहां की शक्ति लेनी है। कोई कारण से ये सब साधन पता है किस लिए बने हैं? मधुबन से सहयोग भी किस लिए दिया जाता कि भाई कोई बुढ़ा है, कोई बीमार है, कोई बांधेली है, कोई नहीं आ सकती, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सब कुछ कर सकते हैं वो अलबेलेपन के कारण इनसे वंचित न रहें, ये ध्यान रखना। अलबेलापन बहुत बड़ा माया का वार है, तो आप सब अलबेले नहीं बनना। बाकी कोई कारण है नहीं जा सकते, वो अलग बात है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं, रुकावट ही नहीं है, उसमें आपको सहयोग मिलता है मोबाइल से और टीवी से।
एक लास्ट क्वेश्चन है जी, मुरली सुनने की सही विधि क्या है?
ऐसा है कि सही विधि, वैसे तो मैंने जब मुरली सुनना शुरू किया तो दीदी ने हमें सिखाई थी, मुझे कहा था कि तुम अपनी डायरी के 4 भाग बना लो और 4 भाग में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, साकार मुरली के अंदर चारों सब्जेक्ट होती, और किसी किसी मुरली में बहुत अच्छी बातें धारणा की, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छे ज्ञान के रतन होते, लिखो अलग अलग करके, आदत डालो। स्टूडेंट लाइफ तभी मानी जाएगी जब लिखने की आदत डालेंगे। कोई नहीं पढ़े लिखे उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो लिख सकते हैं मुरली से कुछ न कुछ 2-4 बातें अच्छी नोट्स करनी चाहिए, लेनी चाहिए, चाहे आप धारणा की बात को अंडरलाइन कर लो, चाहे योग की कर लो, चाहे सेवा की कर लो, चाहे ज्ञान की, तो आपके पास एक लिस्ट हो जाएगी। मानो आज ज्ञान की बातें ले रहे, सर्वव्यापी की 50 पॉइंट्स आपको मुरलियों से मिल जाएंगी। एक हफ्ते के अंदर आपके पास बहुत अच्छा खजाना जमा हो जाएगा। तो एक विधि ये है, कि हम सब स्टूडेंट लाइफ में लिखने की आदत डालें तो मुरली चलती है, नहीं तो कई बातें भूल जाती। दूसरी विधि ये है कि मान लो अगर बाबा सुना रहा है कि सत्युग में ये होगा, सत्युग में ऐसे होगा, लक्ष्मी नारायण का राज ऐसे होगा, तो हम कभी अपनी बुद्धि को सत्युग के सीन के अंदर इमर्ज करें, कभी परमधाम घर को इमर्ज करें, कभी साकारी मधुबन को इमर्ज करें, कैसे बाबा मुरली चलाता है। तो मुरली सुनते सुनते हम बुद्धि को ड्रिल कराते रहे तो उसकी अनुभूतियां होती रहेंगी, तो ये भी बड़ी अच्छी विधि है। तीसरी विधि ये है कि आप अगर मुरली ऐसे ही सुनते हो तो जब यहां से उठ के जाओ, सेंटर से जब बाहर जाओ घर तक, तो उसको अंदर अंदर रिवाइज करो, आज मैंने क्या सुना, आज बाबा ने कौन सी अच्छी बात हाईलाइट की। दो चार बातें भी अगर आती हैं तो घर में या ऑफिस में जब समय मिले तो वो जो मुरली की पॉइंट आपने रिपीट कर लिया अंदर अंदर वो लिख डालो, पढ़ के नहीं, देख करके नहीं, लेकिन अंदर अंदर स्मृति में ला करके आज सवेरे मैंने ये बातें वरदान में सुनी, स्लोगन में सुनी, धारणा में सुनी, वो फिर अपनी डायरी में नोट कर लो, तो आपके लिए वो खजाना हो जाएगा। इतना अच्छा खजाना होता है, इसका मुझे अपना अनुभव है कि किसी भी टॉपिक पर क्लास कराना हो, कोई भी बात बहन जी बोल दें ये आज कराना है, सब बातों को चिंतन में पहले लिया हुआ है, उस दिन हमको बात पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, सब पढ़ लिया है। तो जब हम कभी भी मुरली सुन करके समय होता है 10 मिनट 15 मिनट, तो एकांत में चले जाएं, बैठें, अंदर अंदर विचार करें, मुरली को याद करें, रिवाइज करें, और फिर वो पॉइंट्स जरूर लिखें, तो वो अपना खजाना हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं कभी भी। ये तीन विधियां हैं।
वंडरफुल भाई जी, आपने वैसे तो आपके पास ज्ञान भंडार बहुत है, हम और भी सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की अवधि को देखते हुए हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और ये बहुत वंडरफुल सेशन रहा आपका, बहुत 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 दिल से थैंक्स सबके तरफ से, थैंक यू सो मच।
अभी मैं एक बात कह करके विराम दूंगा, कल बाबा का अवतरण दिन है डेट अनुसार, और बाबा की मुरली हम सब के लिए कल चलेगी, वीडियो के द्वारा हम सब सुनेंगे देखेंगे। लेकिन इस समय मैंने अनुभव किया है हर ग्रुप में बाबा अभी डायरेक्ट बच्चों की पालना कर रहे हैं, डायरेक्ट गुलजार दादी कार्यरत तो अभी नहीं है हमारे बीच में, और वो अनुभूति करने के लिए कल के दिन सब 4 बजे अमृत वेले से जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, कोई भी बाई मुक्ता में नहीं आना, अगर आवाज से परे रहेंगे तो बाबा सवेरे से ही आपको सकास देगा, शक्ति देगा, और शाम के समय आप अनुभव करेंगे कि बाबा की डायरेक्ट मुरली मेरे लिए चल रही है, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो कल के दिन बहुत अलौकिक अनुभूतियां करने का दिन है, ऐसे कोई नहीं सोचना बाबा तो आएगा नहीं, कहीं भी बैठ जाओ जरूरत नहीं है, क्या वीडियो तो पहले हमने देखी है, नहीं, बाबा का बहुत गुप्त पार्ट अव्यक्त रूप में सकास देने का चल रहा है, सब बच्चों को अनुभूतियां होंगी, इसलिए आप सब समय निकाल के अमृत वेले से रात्रि तक बहुत अंतर्मुखी बन करके अव्यक्त वतन की सैर करना, ठीक है। ओम शांति।